அடமோரியாணம் அடமோ சித்தாணம் அடமோவாயிரியாணம் அடமோ வஜ்ஜாயாணம் அடமோலோயே சவ்யசாஹுரம் மங்களம் பகவான் அவீரோ மங்களம் கௌதிமோகடி மங்களம் குந்த குந்தாரியோ ஜெயனி தர்மோஸ்து மங்களம் சர்வ மங்கள மாங்கல்யம் சர்வ கல்யாண காரகம் பிரதானம் சர்வ தர்மாணாம் ஜெயனம் ஜயது சாசனம் ஜெயனம் ஜயது சாசனம் நம ஸ்ரீ வர்தமானாய் நிருதூதி கலிலாத்மனே சாலோகானாம் த்ரிலோகானாம் யதி வித்யா தர்பணாயதி தீசியாமி சமீசீனம் தர்மம் கர்ம நிவர்ணம் சம்சார துக்கித சத்வான் யோ தரத்துத்தமே சுகே சத்ருஷ்டி ஞான வ்ருத்தானி தர்மம் தர்மேஸ்வராவிது யதீய ப்ரத்யனீகானி பவந்தி பவ பத்ததி. சல்லேகனா கி சர்ச்சா. पेज नंबर है 437. मृत्यु मार्गे प्रवर्तस्य वीतरागो ददातु मे समाधि बोधौ पाथेयम् यावन मुक्ति पुरौ पुरा. इसमें आता है हे वीतरागी भगवान, मैं मृत्यु के मार्ग पर हूँ, मुझे आप समाधि अर्थात स्वरूप की सावधानी बोधि अर्थात रत्नात्रय रूप पाथे परलोक के मार्ग में उपकारक भोजन रूप वस्तु प्रदान करें, जिससे मैं मुक्तिपुरी तक पहुँच जाऊँ, ऐसी प्रार्थना करता हूँ. सारा जगत जिस मृत्यु के नाम से डरता है, नाम सुनता है तो उससे कांप जाता है कि मरना पड़ेगा. एक महीने की रह गई, अब 10 दिन की रह गई, अब 1 दिन की रह गई, घबराता है. और ज्ञानी जन इसे महोत्सव मनाते. क्यों मनाते? कि सारी दुकान में आग लग जाए, हमारा क्या बिगड़ता है? बीमा इंश्योरेंस है तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ता. ऐसे ही जो मरता है वो मैं नहीं हूं, इसलिए डर नहीं लगता. जो डर लगता है वो डर का कारण है अज्ञान. अज्ञान यानी जो अपना स्वरूप नहीं है, वस्तु स्वरूप नहीं है, उससे विपरीत सोचना, उससे उल्टा सोचना, देह में हम सोचना, संयोगों में अपनापन देना, इससे जीव को मौत का भय लगता. सब छूट जाएगा. वो कहते हैं कुछ भी नहीं छूटेगा, जीव का जीव के साथ सब जाएगा. कुछ भी छूटने लायक नहीं है. आज तक विवेक बताना, शक्कर ने कभी मिठास छोड़ी हो तो बताओ. इतने बड़े 3 काल में रिकॉर्ड बनाओ. किसी द्रव्य ने अपना स्वभाव छोड़ा हो ऐसा कभी मिला? तो जीव अपना क्या छोड़ देगा? कुछ नहीं छोड़ेगा. फिर डर काहे का लगता है? लगता ही नहीं. मृत्यु के नाम से डर लगता है. एक टेलर के यहां कपड़ा डाला तो उसे कहा कि कितने दिन में चाहिए? टेलर बोला कि 15-20 दिन में दे देना. अब 20 दिन में गए तो उसने नहीं बनाया. क्योंकि जब 20 दिन हो गए, हमने तो 15 दिन में कहा. कि दे देंगे साहब दो दिन बाद ले लें। दो दिन बाद गए, बना नहीं यार अभी, फिर कल दे देंगे। फिर कल गए तो अभी नहीं बना, क्या करते हो भाई, कल शादी है तो बना दिया उसे। तो जितनी इम्पोर्टेंस होगी वैसे वीर काम करेगा, उसमें भजन आएगा। ऐसे जितना आपको अनिवार्य विवेक होगा, ज्ञान होगा कि सचमुच में छूट जाएगी क्या, ये देह छूटना यानी विशुद्धि छूटना, छेपसन छूटना, देवसास गुरु की शरण छूटना, संयम छूटना, रत्नात्रय छूटना, ये छूटेगा तो ये जीव कहाँ पड़ेगा, इसके लिए सावधान करा रहे। वैसे देखो तो किसी का मरण नहीं होता, कोई द्रव आज तक मरा नहीं, छह द्रव में कितने द्रव मरे आज तक, एक भी द्रव नहीं मरा। आदिनाथ के समय भी कितने द्रव थे दिलीप भाई, छह, और महावीर स्वामी के जमाने में छह, और महापद में आएंगे उनके समय कितने रहेंगे, तो कहाँ कुछ घटता बढ़ता। ऐसा करणान युग में आता बाबू जी कि सिद्ध भगवान की संख्या 608 जीव 6 महीने 8 समय में सिद्ध हो रहे, और 608 जीव निगोद से निकल करके ऊपर जा रहे। ऊपर संख्या सिद्धों की बढ़ रही कि नहीं, और यहाँ निगोदिया की घट रही कि नहीं, तो उसमें कैलकुलेशन में बताया ना ऊपर बढ़ रहा है ना नीचे घट रहा है। जी कौन सा कैलकुलेशन, कौन सा कंप्यूटर है। वो कहते हैं कि इतनी ज्यादा संख्या है कि तीन काल में एक आलू के जीव जितने जीव हैं इतने भी सिद्ध नहीं होंगे। तीन काल में कह रहे बाबू जी, ये करुणान युग गोमठ सार में लिखा है, एक नगूद शरीरे जीवा जीव अपमान दो दिठा सिद्धे ही अनंत गुणा, सुई की नोक में जितना रस अदरक का आलू का प्याज का लहसुन का गाजर का मूली का आता है कंदमूल का, उसमें इतने रस में इतने ज्यादा निगोदिया जीव हैं कि सिद्धे ही अनंत गुणा, जितने सिद्ध आज तक हुए हैं उनसे अनंत गुणे जीव उसने आलू के रस में। अच्छा अब ये युगल जी बाबू बोली कि ये कारिका अभी तक के लिए कि भविष्य में भी बताई जाए कि अनंत काल बाद भी यही कारिका गाई जाएगी कि एक निगोद गया शरीर में सिद्धों से अनंत गुणे जीव, तो अनंत अनंत और निकल गए, फिर भी कहते इतनी ज्यादा जीव राशि है। अब आप सोचो अपन कैसे उचट के आ गए, मध्य लोक में आ गए, सैनी पंचेंद्री हो गए, अपन को कल्पना नहीं है कि कितना जीव बिलक रहा है तड़प रहा है, और क्या उपाय है, किसी के पास उपाय, सबको एक सनक सूझती है कि भूख लगी है तो भोजन मिलना चाहिए, नींद लगती है तो बिस्तर मिलना चाहिए, घूमना है तो पैसा चाहिए, आत्मा किसी को नहीं चाहिए, इच्छाओं के अभाव का कोई को जरूरत नहीं, उपाय नहीं, तो ये जीव दुखी रहता, दुखी ही रहेगा। एक सुखी होने का मंत्र तो भगवान के पास है कि तुम जो अज्ञानता से दुखी हो, अज्ञानता यानी देह 10 प्राण को आत्मा के प्राण मानते हो, आत्मा की सत्ता मानते हो, इससे तुम्हारे नहीं मरने पर प्राण जाते हैं, नहीं मरने पर यानी दादी बैठी है नीचे और उसका नाती यहाँ से नीचे गिरा, बताना आप लोग सच सोचना, यहाँ से बच्चा छोटा नीचे गिरा तो लगेगा किसे गुड़िया, बच्चा को लगेगा कि दादी को लगेगा, बच्चे को लगेगा ना, और ज्यादा दुखी कौन होगी, तो काय का दुख होता मोह का होता है, राग का होता, ऐसा ये जीव को अज्ञानता से इस देह के छूटने का कि मैं मर जाऊंगा मैं मर जाऊंगा, मरने के पहले मर जाता, बुढ़िया जवानी में मर गई, मतलब क्या होता कि इसने जवानी में ही अपने को मरा जैसा देखा, शरीर तो बूढ़ा जरूर हो गया पर ये छोटे से मैं मर चुकी, ऐसा मिथ्यात् का स्वरूप है ये 24 घंटे भाव कर्म या भाव मरण सदा। और ज्ञानी जन देवो क्या कह रहे कि हे भगवान हम मौत के मार्ग पर चलते, हमें कोई डर नहीं, देखिए ऐसी भाषा कभी सुनी होगी, मृत्यु के मार्ग पर आग पर चलने तैयार है सीता, किस बात पर, उसके चित्त में आग नहीं आ रही, सतत्व आ रहा, मैंने कभी अपने परिणाम दूषित नहीं किए, आग की ताकत नहीं है कि मेरा कुछ बिगाड़ सके, तो उसे वो सतत्व दिखता था तो आग नहीं दिखती थी, कूद गई, दीवान अमरचंद जी का नाम सुना बाबू, वो अमरचंद जी शेर के पिंजरे में घुसे, तो कैसे घुसे होंगे, अपन को तो शेर की आबाजी में पसीना आ जाए, बीपी बढ़ जाए, येल्लो हो जाए, तो वो कैसे घुसे होंगे कि उन्हें वो शेर दिखे तब ना, उन्हें तो आत्मा दिखता था, आत्मा उन्हें क्यों दिखता था, क्योंकि वो अपने को आत्मा देखते थे, तो सामने वाला भी कौन दिखेगा, आत्मा दिखे। और अपन कोई आदमी मर गया, ये आदमी मर गया, अनुभ ये क्यों लगता है, क्योंकि अपने को यहाँ से देखता है कि हम मर जाएंगे एक दिन, ये एक दिन सब पड़ा रहेगा और अपन मर जाए, अरे तुम ही तो नहीं मरते और तो सब मरता। ये ऐसी पढ़ाई है कि ये जीव कभी मरता नहीं है, मैं मृत्यु के मार्ग पर हूँ, यानी मौत आ रही है, मुझे मान में देह छूटेगा पर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, मैंने अनादि काल से अनंत बार कुमरण की, यानी जब तक ज्ञान नहीं था तब तक इस जीव की अनंत बार जो देह छूटी वो मरण नहीं, कुमरण किए, यानी मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं मर गया, ये कुमरण की, पुद्गल मरता है कि जीव मरता है, ना पुद्गल मरता है और ना जीव मरता है, और पुद्गल को कभी दुख होता है नहीं होता है, और दुखी कौन होता है जो मरता नहीं, तो किस बात का दुखी होता है कि मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, तो मरण कहां से देखता अपने आप को, संयोग से, यहां से देखता है, जैसे दादी देखती है कि अरे रे रे मर गया मर गया बच्चा, और वो लड़का खेल रहा है और दादी रो रही, ऐसे जीव को जितना दुख है सब मोह का ममत्व का, ममता की पतवार न तोड़ी आखिर को दम तोड़ दिया, एक अनजाने राही ने शिवपुर का मार्ग छोड़ दिया, ममता की पतवार न तोड़ी आखिर को दम तोड़ दिया, नरक में जिसने भावे ना भाई मानुष तन को पाने की, भीष दिगंबर धारण करके मुक्ति पद को पाने की, लेकिन देखो आज हालत ममता के दीवाने की, चेतन होकर जड़ द्रव्यों से कैसा नाता जोड़ लिया, एक अनजाने राही ने शिवपुर का मार्ग छोड़ दिया, ममता की पतवार न तोड़ी आखिर को दम तोड़ दिया। मतलब जिनेन्द्र जी कहते हैं कि देह छूटेगा इसे तो हम नहीं रोक सकते, पर तुम्हें मरण दुख ना हो इसकी गारंटी हम लेते, हमारे पास अज्ञान से उत्पन्न हुए दुख को मिटाने का इलाज तो है, पर देह ना छूटे ये हमारे पास इलाज नहीं, क्योंकि देह पर द्रव्य है, इसमें हमारा कुछ चलता नहीं, और जो दुख है वो अज्ञान जनित है, अज्ञान मिटते ही दुख मिटता है, और ये काम सरल, तो ये बस साहसी व्यक्ति का काम है कि हे भगवान मैं मृत्यु के मार्ग पर आता हूं, यानी मुझे पता है देह छूटेगा और मैं नहीं मरूंगा, तो जब मैं मरूंगा नहीं तो मुझे दुख नहीं होगा, परंतु मेरा रत्नात्रय संयम आराधना मेरे साथ जाए, ये विनय, ये भक्ति है, ये विनय है, पुरुषार्थ तो जीव का है, मिथ्या दर्शन के प्रभाव से मैंने देह को ही आत्मा मानकर अपने ज्ञान दर्शन स्वरूप का घात करके अनंत परिवर्तन किए, अब आप विदराग भगवान से ऐसी प्रार्थना करता हूं कि मेरे मरण के समय वेदना मरण व आत्मज्ञान रहित कुमरण न हो, सर्वज्ञ वितराग की शरण सहित संकलिश रहित धर्म ध्यान पूर्वक सम्यक मरण चाहता हूँ, इसलिए वीतरागी की ही शरण ग्रहण करता हूँ। देखो कितना संतुलित बात, कभी कल्पना नहीं कर सकता कोई कि एक इस तरह का ज्ञानी का चिंतन होता। क्या लिखा बाबू जी, मुझे वेदना मरण और आत्मज्ञान रहित कुमरण न हो। ऐसा नहीं कहा कि मैं मर न जाऊं, बचाओ भगवान बचाओ, ऐसी गलत डिमांड नहीं की। क्या मांगा है कि मरण हो उस समय मेरे परिणाम न बिगड़े, वेदना ना हो अर्थात मैं उससे एकत्व में ममत्व में दुखी न हो जाऊं। ये क्यों छूट रहा, क्यों जल्दी से देह छूटने का काल आ गया, अभी तो और जीते, ये अज्ञान न हो। जो सबके देह छूटना, अपन जितने बैठे इसमें तो कोई भी ये प्रकरण ना भी सुने तो अभी उसके जीवन में ये घटना तो आना, चाहे बालक हो चाहे वृद्ध हो चाहे जवान हो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो चाहे देव हो नारकी हो त्रियंश हो, कोई भी जीव इसके संयोग हुआ है उसका तो वियोग होगा। इसी पहले से तैयारी क्या होना चाहिए मनुष्य पर्याय में कि बुढ़ापा आएगा और इंद्रियां फैल होंगी, बुढ़ापा आएगा और पुण्य जलने लगेगा। जैसे देव का पुण्य जलता है तो उस समय उसकी पत्नी धर्म पत्नी उसके पास खड़ी नहीं होती, उसे देखने लगता है कि अब हमारा दूसरा पति आने वाला है और ये मरने वाला है, तो उसके प्रति उपेक्षा चालू हो जाती है उसके जीते जी। देव पर्याय इतनी तुच्छ पर्याय इस मामले में कि वहां पे ट्रांसफर होता है, इनकी आयु होती है सागरों की देवों की, और कोई देवी इनकी आखिरी जीवन काल में आई तो उसे रहना है और जीवन जीतना है तो वो किसकी बन के रहेगी, तो दूसरा देव आएगा उस विमान में तो उसकी पत्नी बन जाए, तो अब उसे उपेक्षा होगी, दुख होगा कि हमसे कोई बात नहीं करता, हमारे पास मित्र नहीं आते। ऐसे ही अपने साथ होना, अभी अपन को जो लग रहा है अनुकूलता ये सब बनी नहीं रहना, अनुकूलता यानी संयोग बने रहेंगे पर आपके जो इच्छा होगी उसके अनुसार जगत में नहीं होना है कुछ। आपका लड़का भी आपके साथ खड़े होने तैयार है, क्यों, इसके लिए उस जाति का पुण्य चाहिए कि वो समाधि कराए। अस्पताल में तो डालने वाले लड़के मिल जाएंगे पर शांति से जीव को वेद विज्ञान कराने वाले पुत्र नहीं मिलेंगे आजकल के, क्योंकि वो रहते ही नहीं मंदिरों में शांति से स्वाध्याय में, तो वो ये बातें कहाँ पढ़े, वो तो ये पढ़े है कि पता ही तकलीफ है आपको, चले चलिए अस्पताल चले। कौन सी अस्पताल जहां तुम्हें कोई भगवान का नाम न सुना सके, ICCU में डाल देंगे और हम भी नहीं जाएंगे, पत्नी भी नहीं जाएगी, तुम अपने आराम से दूसरी पर्याय में चले जाना, हम तेरे ही के बाद प्याऊ खोल देंगे आपके नाम। जियत पिता से दंगम दंगा, मरत पिता को पहुंचाए गंगा, जियत पिता से पूछे ना बात और मरे पिता को दाल भात। जगत कैसा स्वार्थी जिसने जन्म दिया, जिसकी छत्रछाया में आप पढ़े हो बड़े हुए हो और बिल्कुल अलग हो जाता है, ये जड़ संपत्ति इतनी है कि उसे माँ बाप की छाया से अलग पटक देती, दूसरी जगह भेज देती, न उसको ऐसा लगता है कि हमें सेवा करके पुण्य कमाना चाहिए, तीर्थ कहलाते माता पिता, तो वो भी पुण्य आज के बच्चों को नहीं होना क्योंकि ज्यादा पढ़ गए तो उनका पुण्य जलने के लिए दूसरे ठिकाने में, और पिता का पुण्य इतना है नहीं माता का कि वो साथ दे सके। अब ये सब आपके जीवन में हमारे जीवन में आना कि ये सब फेल होंगे, आपके जो सहयोगी हैं साथी हैं अभी आपके पास खड़े नहीं होंगे, आपकी इच्छाएं होगी और इच्छाओं के अनुसार काम नहीं बनेंगे, फिर आप क्या करोगे, तो ये पढ़ा रहे समरसी भाव सीखो, अपने परिणाम नहीं बिगाड़ना, कोई भी खड़ा ना हो, ये जीव अकेला है, मैं एकाकी एकत्व लिए सभी आते, जिनेन्द्र देव के फार्मूला तुम्हें साथ देंगे, भगवान ने कहा ये जीव अकेला है। अभी अपना लड़का अपनी बात नहीं मानता तो अपन दुखी होते, और जिनेन्द्र देव कहते हैं कि नहीं मानना चाहिए क्योंकि वो तुम्हारा लड़का कहाँ है, वो स्वतंत्र द्रव्य, और जब भी मानता है तो तुम्हारे पुण्य के उदय में मानता दिखता है, वो तुम्हारी नहीं मानता, वो अपने हिसाब से चलता, कुछ एक भी बात भगवान की जम जाए तो अपना ये माथा जो गर्म रहता है ना वो ठंडा हो जाता है। बहुत दुखी है जी लड़के तो आजकल के, अरे आजकल के नहीं अनादि काल के, आदिनाथ की नाती ने मारी से नहीं मानी तो अपने मान जाए कल युग वाले अपन लोग, चौथे काल में नहीं मानी, पिताजी दादाजी की बात सुनते थे मारी और बार झंडा लाल ध्वजा का खड़ा करता था, चमीटा ले आता था, उपद्रव करता था, इतने बड़े तीर्थंकर का तो स्वीकार नहीं किया, तो अपने बच्चे अपनी मान जाए, नहीं ही मानना चाहिए, ऐसा मान के बैठो तो शांति रहे कि हमारे बेटे हमारे काम में नहीं आएंगे, हम ये पहले ही से सोच के बैठे हैं, हमें उन्हें काम में नहीं लेना है, हमें आत्मबल बढ़ाना है, जो हमारे इंद्रभूति गौतम गर्दन ने बढ़ाया था, आदि महावीर ऊपर गए तो भी अपने पैर पर खड़े हो गए, वो केवल ज्ञान लेके बता दी, किसी के आश्रय से नहीं रहे, सुखी रहे। आपने सबने सुना तूरमल जी का देहांत, बहुत प्रसिद्ध है बाबू जी, कितना महान जीव, आज तो तूरमल जी जैसे मिसाल विद्वानों में सर्वश्रेष्ठ, यानी उस समय पाकिस्तान से और भारत के सारे नगरों से उनके पास प्रश्न आते थे, समाधान देते, कोई विलक्षण मती का धनी था। जयचंद जी छावड़ा साहब ने 18 ग्रंथों की टीका लिखी और उनसे कहा कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक पूरा करो, तो बोली मेरी मती नहीं चल, ये उन्हीं की बुद्धि थी, इतने महान। ऐसा व्यक्ति देखो उदय कैसा आएगा, कि इतना उत्कृष्ट सरस्वती का सेवक और कैसा उदय आया कि उसे जबरदस्ती दोष लगाया गया, उसने जेब में रख दी पिंडी फोड़ के और कह दिया गवर्नमेंट सरकार से कि देखो ये धर्म विरोधी व्यक्ति, ये हमारे शंकर जी की पिंडी फोड़ के ले आ, और पकड़ लिया गया। सबको पता है कि जब वो जा रहे थे तो उनकी जयचंद जी छावड़ा, दौलत राम जी, गुमानी राम जी, बुद्धजन जितने भी साथी थे शैली के, सबके आंखों में आंसू गए। वो पंडित जी साहब निकले, पुलिस वाला आना है ले जाना, वो पंडित जी साहब आए तो भी सब रो रहे थे कि क्यों भाई क्या हो गया, क्या आप ऐसी बातें करते, क्या हो गया, क्या नहीं हो गया, आपके साथ जो अति हो रही अन्याय हो रहा हमसे सहन नहीं होता, उस श्याम तिवारी को हम भी देख लेंगे यदि आपके साथ कुछ हो, ऐसे रो रहे शिकायत कर कि तुम्हें हमने जीवन भर ही पढ़ाया था कि अनादि निधन वस्तु में भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा लिए परिणमित होती है, कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी को परिणमित करा सकता नहीं है, पर को परिणमित कराने का भाव ही खोटा मिथ्या, ऐसा क्यों सोचते, अरे साहब हमसे सहन नहीं होगा, आप आपकी विदाई हम नहीं देख सकते, और वो भी कौन से तरीके से, हाथी के पैर के नीचे, और इतना बड़ा आत्मज्ञानी, पर उदय देव किसी को नहीं छोड़ता, कभी उनके जीवन में ऐसा प्रसंग बना होगा कि उनके पैर के नीचे कोई जीव ऐसा मरा हो, अभी अपन को समझ में नहीं आता, गाड़ी पे चलने वाले काय को देखे नीचे कौन मर रहा, अपने घर पहुंच गए तुम जानो तुम्हारा मरण तुम्हारा जन्म, हम तो धर्म करके आया, इसे पता ही नहीं चलता ईर्ष्यापद प्रतिक्रमण क्या कहलाता, पहले पैदल चलते थे देख के चलते थे, वो विशुद्धि आती थी बहुत, सब गायब होती जा रही, रेडीमेड पूजा, आया पुजारी और उसने सबको थाली दे दी, अपन क्या कर रहे बैठे रहते, तो ये विशुद्धि कैसे होगी, आपके तो प्रणाम हिल नहीं रहे, जैसे घर में बैठे थे आराम से हसी मंदिर में बैठे कुछ असर ही नहीं पड़, ये तो पिघलने का मार है ना, धक्का लगना चाहिए अपनी अनुकूलताओं पर सुख बुद्धि पर, तब तो ये जीव थोड़ा खसके मिथ्या से, ये तो मंदिर में भी वही समझता है जैसे घर में, ये जैन शासन है जो ऐसा सिखाता है कि भाई इतने बड़े ज्ञानी तूरमल जी को भी उदय ने नहीं छोड़ा, और जब वो जाने लगे थे ना तो वो रोए तो बोल गए कि देखो मेरा आज महोत्सव का दिवस, ऐसी प्रसन्नता से आज मुझे बहुत खुशी, किसी बातें करते हो आपका आज हमारा वियोग हो जाएगा, आज खुशी काय कि मुझे ये पता चल गया है कि एक घंटे बाद देह छूट जाएगी, किसी को पता कहाँ चलती कि मेरे कब जाना है, मेरा भाग तो देखो मुझे मालूम है कि एक घंटे बाद देह छूटना इसका दुख नहीं, ये पता चल रहा है इसकी खुशी, ये कौन व्यक्ति होगा जो ऐसा सामना करे, सम्य ज्ञान का प्रताप है, अपन को कला सीखना, यदि भेद विज्ञान नहीं कर पाए तो अपनी मौतें कौन संभालेगा, क्योंकि अपनी सुखिया बुद्धि पड़ गई आदत रहने की, फिर अपने को ये प्रतिकूलता आएगी तो पहाड़ जैसी बन जाए, और अभी से दुख सहने की आदत डालना चाहिए। धरती पे बैठना, हाथ जोड़ना, खड़े खड़े ऐसा आज झुकता नहीं है व्यक्ति भगवान के सामने, झुकना, इसमें कमर अमर सब ठीक हो जाएगी, नहीं झुकेगी तो और कमर के दर्द बढ़ेंगे। ये वैज्ञानिक उपाय है जो भगवान ने बताया, पर आज क्या करे, जगत का जीव जैसा सोचता है फिर वैसा शरीर ढलता जाता। तो तुरंत जी को ले गए और वो हाथी के पैर से दबाना, कैसा शासक होगा और कैसी न्याय पद्धति। तो बोले कि तुरंत जी आखिरी कुछ भावना हो, भगवान का स्मरण करें, आप अपना काम करो। तो उस सामायिक जाप ध्यान में बैठ गए और वो हाथी उनके ऊपर पैर रखने को तैयार। और उन्हें कैसे पता चला, जब उसे पेना पदार्थ लगाते थे ना बार बार, तो उसे खून गिरने लगा, और जब उनके ऊपर पड़ा तब उन्हें कहा कि ये खून कैसे गिर रहा है, तो ऊपर देखा कि उसको मार रहा है महावत। तब उसे लगा कि अरे रे, हमारे पीछे इसको क्यों ताड़ना दी थी, इसने क्या बिगाड़ा। तो तब उनने कहा कि हे गजराज, तेरा इसमें क्या अपराध, तू तो इसका दास है, उनने जो कहा सो करना, मैं मरने वाला नहीं, तू अपना काम कर। बताओ, देह छूट कर मरण करने के बाद भी हमारे हैं, आज कौन भुला सकता तोड़ में। समाधि से देह छोड़ी, ऐसे मृत्यु के मार्ग पर चले, सुमरण करके गए। दीवान अमरचंद जी का बाबू जी नाम सुना, अंग्रेजी शासक ने ये देखा कि हमारा एक व्यक्ति मार डाला और ये हिंदुओं ने, भारतीयों ने मार, उन्होंने कहा कि बताओ किसने मारा है, नहीं तो मैं आज 200 व्यक्तियों को मारूंगा। और उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति ने मारा और 200 व्यक्ति मर जाएंगे। तो दीवान अमरचंद जी थे उस समय के बहुत करुणा सागर, और वो खड़े होके आए, जिनने कुछ नहीं किया वो बोले साहब मैंने मारा, हम लेट हो गए बताने। तो उन्हें 200 लोगों को छोड़ा और फिर वो बैठ गए कि आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है, कि बस भगवान का स्मरण करें और कोई हमें डिमांड नहीं। तो बैठ गए और उस एक घंटे का टाइम लिया था और 58 मिनट हुआ और उनका देह छूट गया, और जब वो अंग्रेज आया हिलाकर देखा तो आत्मा नहीं रही, मट्टी डली थी। ज्ञानियों की कथा है, जिनको ये देह से भिन्न आत्मा का पता चल गया उन्हें कौन मार सकता, और जिन्हें नहीं पता चला उनके दुख कौन दूर कर सकता। हर व्यक्ति को ये ममत्व का दुख होता ही होता है, इसके पहले तैयार हो जाए। कह रहे अजर हूँ अमर हूँ न मरा कभी, चिदानंद शाश्वत निडरता सभी। संसार के जीव मरते डरे, चिदानंद का हम तो वेदन करे। परम पंच परमेष्टि का ध्यान धर, परम ब्रह्म का रूप आया नजर। परम ब्रह्म की मुझे को आई परख, हुआ उर्म संन्यास का अब हरख। यह देह चिरकाल की है मुई, मेरी जिंदगानी से जिंदा हुई। तजा हमने नफरत ये मुर्दाज, चलो वीर अब चल करें मुक्ति राज। इस झोपड़ी को लगी आग जब, हुई मेरे बैराग की जाग तब। मेरा नाम है जीव, मैं जीव हूँ, चिर जीव चिर काल चिरंजीव, यह सब विचार करता अनुभव करता देह छोड़ देता। पहले से निर्णय होगा कि ये मेरी नहीं है तो छोड़ने में कष्ट नहीं होगा, और यदि भेद विज्ञान नहीं हुआ तो कोई कष्ट को दूर नहीं कर सकता। तो ये समरसी भाव आना, ये अपनी आराधना की उपलब्धि है। पेज नंबर 438। तुम्हारा रूप तो ज्ञान है जिसमें ये सकल पदार्थ प्रकाशित हो रहे, अमूर्ति ज्ञान ज्योति स्वरूप अखंड अविनाशी ज्ञाता दृष्टा है, जो ये हाड़ मांस चमड़ा में महादुर्गंधित विनाशी देह वह तुम्हारे रूप से अत्यंत भिन्न है। कर्म के बस से एक क्षेत्र में अवगान करके एक जैसे हो रहे हैं मिल रहे, तो भी तुमने इसमें अत्यंत भेद है। यह देह तो पृथ्वी जल अग्नि पवन के परमाणुओं का पिंड है, जो समय आने पर बिखर जाएगा, किंतु यदि तुम अविनाशी अखंड ज्ञायक रूप हो तो देह के नाश होने से तुम्हें क्या भय होगा? कुछ भय नहीं होगा। यानी सारे भय की जड़ क्या निकली? देह जीव को एक गिने मैरातम तत्व मुदा, जो अपना नहीं उसके अपने पन में जीवन चला गया, पर मैं अपना पन करके हा मैं अपने से चला गया। बहुत ताकत लगाना है इसमें, निरंतर इसका अभ्यास करना। जो निरंतर बच्ची पढ़ती रहती है वो परीक्षा देने में डरती, ऐसे ही जो हमेशा ये अभ्यास करेगा ये मैं नहीं हूं ये मैं नहीं हूं, जैसे अपन ने पानी मांगा है ना, और बच्ची ने पानी नहीं दिया, तो ये अभ्यास होना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, इस समय पानी नहीं आना था इसलिए नहीं आया। ऐसा समरसी भाव आपको समाधि करा दे। रोग आया और दवाई न मिल पाए, मिल जाए न लग पाए, उदयाधीन है नहीं सब, और उस समय समरसी भाव चले। खून किसका करता धरता, किसको रोग है, मुझे क्या है, और ये तो देह व्याधि का मंदिर है, इसमें तो ऐसे रोग होने चाहिए, ये विचार आपको समाधि करा दे। यानी जिनेन्द्र देव के बताए भेद विज्ञान के मंत्र, इसके आदर में समाधि होती है। जैसे आप यहां से देख के चलो तो ये समाधि की तैयारी, भगवान का दर्शन ऐसे करो कि ऐसी मेरी दशा हो जाए, वो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम दा, ये समाधि की तैयारी। अपने विकल्पों की पूर्ति समाधि की तैयारी नहीं, विकल्प हो और उन जैसा काम ना हो और परिणाम न बिगड़े, ये समाधि की तैयारी। विकल्प की पूर्ति हो जाना ये पुण्य का उदय, इससे आपको आत्मा का भजन रहेगा और परिणाम नहीं बिगड़ेंगे, ऐसी कोई गारंटी नहीं। पर विकल्प आदि होते हो और अपना पुण्य ना हो, उदयाधीन है ना खड़ा हो कोई अपने साथ, और फिर भी परिणाम ना बिगड़ने दो, ऐसे ही होना चाहिए। अपने बहू में नहीं आ पा रही कोई अपने सामने, सब काम में लगी होंगी, बेटा कहाँ गया, कारखाना गया, नहीं आ पाए, और फिर ऐसा लगे इसमें क्या है, ऐसा वो अपना दिन भर थोड़ी हमारे पास बैठा रहे, वो भी तो अपना काम देखेगा। यानी वस्तु का स्वरूप है उसका निषेध ना पाए, उसका स्वीकार आता रहे, समझ लेना आप समाधिष्ट हो रहे हो, आपकी सफलता मिले। और वस्तु स्वरूप से विरोध में चले तो कोई तुम्हें सुखी नहीं कर सकता। छोटा बच्चा है वो रोएगा चिल्लाएगा तड़पेगा, और उसको ऐसे ही जानना इस समाधि की तरह, और अपने हिसाब से हैंडल करना कसाय को विचार करना आप। ये सम्य ज्ञानी को समाधि होती, और सम्य ज्ञानी वस्तु स्वरूप का श्रद्धानी होती, और वस्तु स्वरूप के श्रद्धानी को कोई शंकाय प्रश्न नहीं होते। जैसे बाबू जी चंदन वाला, अंजना, मनोरमा, मैना सुंदरी, जितने भी अपन बड़े पुरुष, सुदर्शन सेठ, ऐसे ऐसे ज्ञानियों के अपन को नाम मान, तो उन ज्ञानियों ने जो जो पुण्य पाप कमाए थे उनसे सबके उदय प्रापर आए, और उन्होंने ऐसी प्रतिकूलता के समय क्या किया ये बताओ। प्रतिकूलता आई थी कि नहीं दिलीप भैया? आई थी। फिर उस समय भी दुखी हुए थे कि सुखी हुए थे? प्रसन्न रहे ना। तो दुख का कारण है, दुख भी है तो भी आकुलता नहीं हो रही। कैसी आकुलता नहीं हो रही? भी दोष नहीं लगा रहा किसी को और सहन करने की ताकत ला। यानी ये ऐसा मैटर है कि आप ही को उस घोड़ी पर बैठना है, शादी करवाना है ना, तो मम्मी पापा सब पैदल चलेंगे और आप ही को बैठना है और आप ही को अपने प्रश्न, अपने उत्तर, अपने काफी और अपने को जांचना है और अपने को 100 में से 100 नंबर लेना। नहीं समझ आया? अपने ही प्रश्न जनवर उत्पन्न, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों? ये प्रश्न है ना, तो आप उत्तर आप अपनी मति से दो, ऐसा क्यों हुआ? जैसे बहुत मिर्ची पड़ गई दाल में, तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ? तकलीफ होगी ना कि हमें बहुत अल्सर है या हमसे नहीं सहन होता, तो ये हुआ क्यों? आपका प्रश्न बना कि कितनी मिर्ची डाल दी, कितना नमक डाल दिया, कैसा भोजन है, ऐसा प्रश्न। अब आप समाधान लो विवेक, किसने किया है? वस्तु का सुख विचारो आप, ऐसे ही होना था। अब ऐसे ही होना था तो किससे लड़ोगे, दाल से कि नमक से कि मिर्ची से लड़ोगे? ये भगवान ने क्या गजब का मंत्र दे दिया। इसमें विदाई की बेला एक पुस्तक रतन चंद जी भारे ने लिखी, तो उसमें लिखा कि सुखी जीवन में लिखा है पुस्तक में, तो वो लिखा कि इस शिविर लगा था और उसमें ये तूर्णमल जी वाला मंत्र चल रहा था, अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा लिए परिणमित होते हैं, कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी को परिणमित करा नहीं सकता। ये मंत्र सीख करके सासू जी बहुत प्रसन्न चित्त से शिविर से लौट रहे और चौके में गई बहू जी और देखा कि बहू के आंख से आंसू टपक रहे, तो उन्होंने कहा कि बेटा क्या हो गया? तो वो कैसे बोले कि 5 किलो घी जो आया था अष्टान का पर्व में वो सारा नाली में बह गया। तो पहले तो सासू जी की नजर पड़ी बहू के आंसू पर और फिर बाद में घी पर पड़ी, तो कहते कि बेटा ये रोती क्यों, ये मोती जैसे आंसू बहाते अच्छा नहीं लगता, आज तो यही पाठ पढ़ा है कि अनादि निधन घी अपनी अपनी मर्यादा से बनकर इस चौके तक आएगा और गर्म होते होने के बाद इस नाली से बहकर जाएगा, तो इसमें क्या गड़बड़ी हुई, सही तो हुआ। तो देखती रह गई कि कौन सी सास मिल गई, आज तक तो ऐसी सास कभी देखी नहीं कि इतना घी निकल जाए और उसे कुछ गर्मी नहीं आ रही, गुस्सा नहीं आ रही, कि भगवान मिल गए नहीं तो हम दोनों नरक जाते। आज हमारे अनंत भगवान ने पढ़ा दिया कि प्रत्येक द्रव्य की परिणति स्वतंत्र, को सकदि बारे तुम इंदो व जड़ंदो, इंद्र और जिनेन्द्र भी उसे बदलने में समर्थ नहीं है। तो ये मंत्र ने हमारी जान बचा दी, आज पाप से बचा दिया, और नहीं तो ऐसा किसने बिगाड़ा, क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सम्यक दृष्टि घराने के, धर्मात्मा घराने की भाषा नहीं हुई। कोई बात नहीं, घबराने, हो गया हो जाने। तो उस लड़की को इतना असर पड़ा कि मम्मी इतना घी बह गई, बोले बेटा ये तो मंत्र पढ़ा और अपन दोनों नरक से बच गए, परंतु देखो नरक से तो बचे हैं, बीमार होने से भी बचे, क्योंकि इससे बनते पकवान और पकवान खाते तो पड़ते बीमार, तो ये तो अच्छा है कि पहले चूर्ण नहीं खाना पड़ा इसके पहली बार। अब ये सब में ज्ञान की कला है जो शांति दे रही है। कोई अपन ने फल लिए, अनार लिए, अमरूद या आम कुछ लिए और उसमें उसने 2 आम या अमरूद सड़े रख दिए बाबूजी, अब बताओ अपन को गुस्सा आएगी कि नहीं आएगी? कि तो वो कहते नहीं आएगी, दया आएगी। अच्छा रहा ये सड़े चीजें हमारे घर आ गए, किसी दूसरे के घर जाते तो उसके परिणाम बिगड़ते, हमें तो ये भगवान ने बता दिया कि ये द्रव्य का परिणमन ऐसे घूमते हुए तुम्हारे घर आए, तो बहुत अच्छा, ये तो ऐसा होने चाहिए। अब हमें गुस्सा नहीं आ रही, हंसी आ रही, सड़े अनार देख करके हंसी आ सकती, तब तो अभ्यासी को आ सकती। और फिर निकली उसमें से कीड़े, तो अपन ने उसको एक तरफ रख दिए। यदि बाजार में रखते तो कोई भी उन पे पैर रखता, नाली में डालता, तो सारे असंख्यातों जीव मरते और अपन ने घर में एक कोने में रख दिया, तो बाबू जी कितने जीव बचाए आज, असंख्यातों जीव। ऐसा कोई जगत में कर सकता? सड़े अनार में पुण्य कमा रहे। ये जैनियों का धर्म है, ये वीतरागियों का धर्म। किसी को दोष लगाना ये जैन शासन में है ही नहीं। अंजना के कितने भाई थे मालूम भी? 100 भाई। और अंजना को पवित्र सती को दोष लगाया सास ने, ससुर ने, और उसने मुद्रिका भी बताई कि पति देव आई थी, मिली थी, और 5-6 महीने बाद जब गर्भ को उजाला हुआ तो बहुत निंदा होने लगी मंदिरों में, परंतु वो बिल्कुल नहीं दुखी हुई, क्योंकि हम किसी के सर्टिफिकेट से सती नहीं है। हमें मालूम कि हम पवित्र हैं, तो हमें क्या कलंकित करोगी। इतनी निर्भीक रहती थी नेसन। और बाद में उसे सास ससुर ने तो निकाले, मम्मी पापा ने भी निकाल दिए, भाइयों ने भी निकाल दिए, तब भी दुखी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि दुख का कारण प्रतिकूलता नहीं है, दुख का कारण अज्ञान है, मिथ्या। और उसे न मिथ्या था न अज्ञान था। फिर उसे पति देव आया, बाद में खोजा, और उसे हनुमान जी के जन्म हो गया था, हनुमान के साथ लेके आए, और उसने पैर पकड़ के क्षमा मांगा उसके, सती तुम बहुत पवित्र हो, मेरे कारण से तुम्हें इतने कष्ट और भेजना, 22 साल तो तुम्हें वहां कष्ट दिए हमने, और बाद में सालों ऐसे तो बहुत दुख दिया, हमें क्षमा कर दो। ऐसा पति देव बोला। क्या नाम था पति का? पवनज। उसने क्षमा मांगी। तुम्हारा वो क्या बोले कि मुझे एक बार भूल हो गई, निर्दोष अरहंत देव को दोष लगाया, अब तो मुझे किसी में दोष हो तो दोष नहीं दिखती, मेरी आंख खुल गई। ऐसे ही अपन बहुत भटक चुके हैं, नरक निगोद और त्रियंश गति सब जगह, और ये नाटक कर करके। अब अपनी जवान नहीं हिलना चाहिए किसी को दोष लगाने के लिए, और किसी से कुछ अपेक्षा नहीं, अब तो शांति से जीवन जियो, ज्यो की त्यो धर दीनी चदरिया, कबीरा बड़े जतन सो ओढ़ी। ऐसे रहना इस जगत में जैसे कीचड़ में कमल रहता, और जितने दिन है शांति से रहेंगे, हमारे घर में हम प्रश्न चिन्ह नहीं बनेंगे कि ये बहुत तेज है, ये बहुत परेशान करते हैं। हमारे कारण से परिवार का, समाज का कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं होने, ये विद्या सिखाती है अपनी जनवाणी में, क्योंकि थोड़ा सा जीवन है और शांति से बिताना है, और ये कोई छोटा मोटा काम बिगड़ जाता है, ये तो अपना उदय बिचारो। बाबू ये चार बातें याद रखना, सारे संकट मिटाने बहुत बड़ी बातें हैं, ये चार बातों में सारी घटनाओं के आपको समाधान मिले। पहली बात, जो भी घटना घटती है वो बिना उदय के नहीं घटती। फिर से, जो भी घटना घटती तो वो उसमें निमित्त कौन होगा? पुराना बंधा हुआ कर्म का उदय ही निमित्त होता है, तो उदय के बिना कोई घटना नहीं घटती। दूसरा, जो भी कार्य हुआ उसमें सामने वाला अपन को करता दिखता है, जैसे किसी ने गाली दी, ठोकड़ मार दी, चोरी कर ली, अनादर किया, जो भी घटना घटी उसमें भगवान ये कहते हैं कि इसमें सामने वाला करता नहीं है, क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी करता धरता नहीं होता, वो तो अपने परिणामों तक उसकी मर्यादा है, वो बंद बांध सकता है तो अपने विभाव परिणाम का खुद को बांध सकता, सामने वाली उस घटना का कुछ नहीं कर सकता। यानी जो सीता को अंजना को निकाला गया, इसमें राम का और जगत का कुछ भी नहीं चलता, उसका उदय ही जो वहां खड़ा कर दे। दो बातें हो गई भाई, कौन कौन सी? बिना उदय के कुछ भी कार्य नहीं होते जगत में, जो भी अपने साथ घटते। दूसरा लिखा कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, इस घटना का जो आपके साथ घटी है वो सामने वाले से नहीं घटी है, घटने योग घटी। ये इस तरह का कागज खुलना है तो इसमें एक खुलने का धर्म, हड्डी टूटना है तो टूटने का धर्म, इसमें लाठी लगी इसलिए नहीं टूटी है हड्डी, लाठी तो निमित्त है और टूटने का नंबर उसका परिणमन है। और तीसरा है ये क्रमबद्ध पर्याय, जिस समय जिस नंबर की जिसको आती है उस समय ही ये घटना घटती है, आगे पीछे नहीं घटती। तो वो पर्याय जिम्मेदार है अपने कार्य की। विवेक, कितनी बातें हो गई, बिना उदय के कोई घटना नहीं घटती। यानी आप दूसरे से शिकायत कर ही नहीं सकते, आप अपने उदय से पूछो कि भाई साहब ये कैसे बांध के आई। दूसरा है कि सामने वाला जो करता दिखता है वो तो छूता भी नहीं, वो तो अपने यदि बिगाड़ सकता तो अपने परिणाम अपनी मर्यादा में बिगाड़ सकता। कमठ ने यदि कुछ अहित किया है तो अपने भावों का अहित किया है, पर पारसनाथ का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो दो गए। तीसरा ये पर्याय जो हड्डी टूटने की, गाली आने की या जो अनादर की हुई है, ये तुम्हारे क्रमबद्ध में खचित थी वो हुई। और चौथा उत्तर ये है कि कुछ हुआ ही नहीं, छह द्रव्य के छह द्रव्य, ये द्रव्यान युग ने बताया। अब ये किसी में भी घटना में लगाओ तो आपको हर समस्या का समाधान मिलेगा कि वो द्रव्य अपनी परिणति का स्वतंत्र पने करता धरता है, इसका कोई न करता धरता अमिट अनादि है, जीव और पुद्गल नाचे या में। समझ लेगी तो बहुत बड़ा, अनंतों जीवों से अपने द्वेष और राग खत्म हो जाए, अनंतों से। रामायण पढ़ो आप, पद्म पुराण, और यदि तत्व ज्ञान के बिना पढ़ी तो आप उससे राग द्वेष कलेक्ट करके ले लो। ऐसा क्यों हुआ सीता के साथ, रावण कितना पापी था, ऐसा नहीं करना था, जबकि सीता का ऐसा उदय था, ऐसे बंद बंधे थे, वो घटना ऐसे ही घटने योग्य थी इसलिए घटी है। वो इतने बड़े आचार्य लिख रहे उनको राग द्वेष नहीं हो रहे, और अपन पढ़ करके उसको राग द्वेष खड़ा कर दे। तो इस तरह से देह की भी घटना है वो घटेगी, और इस जीव को सावधान करा रही जनवाणी कि पहले से ही आप ये नक्की करो कि मैं मरने वाला तत्व नहीं हूं। ऐसा सम्यक ज्ञान होगा तो आनंद देगा, और जब आनंद आएगा तो देह को छूटता देखोगे, उसके भी ज्ञाता रहोगे। देखो हम आंखों, हमारी नजरों में ये जाता हुआ दिखाई दे, ताकत का काम है। हे ज्ञानी, तुमको वीतरागी सम्यक ज्ञानी उपदेश करते हैं, मृत्यु रूपी महान उत्सव प्राप्त होने पर क्यों भय करते हो? इस देह में रहने वाला आत्मा अपने स्वरूप में रहता हुआ अन्य देह रूप नगर को चला जाता है, इसमें भय करने का क्या कारण है? जैसे कोई मनुष्य एक जीर्ण कुटिया में से निकलकर अन्य नए महल में जाकर रहने लगता है तो वह बड़े उत्सव का अवसर है, उसी प्रकार यदि यह आत्मा अपने स्वरूप में रहता हुआ ही इस जीर्ण देह रूप कुटिया को छोड़कर नए देह रूप महल को प्राप्त कर ले तो यह महान उत्सव का अवसर है, इसमें कुछ हानि नहीं है जो भय किया जाए। यानी कभी ऐसा कल्पना करो कि बूढ़े बूढ़े आदमी इकट्ठे होते जाए, वो मरे ना, फिर उनकी आंख फूटी, फिर कान फूटी, फिर लीवर डैमेज, फिर किडनी डैमेज, फिर पैरालिसिस, फिर ऐसे कलेक्ट करो इकट्ठा, तो देखो कैसा लगेगा ये म्यूजियम। ये तो बहुत अच्छी व्यवस्था है कि बूढ़ा हुआ और मरा और दूसरी देह मिलेगी, तो ये आश्चर्य जो कह रहे कि भाई साहब ये नूतन महल मिलेगा तो तुम्हें दुख क्या है? अब उस मंदिर से इस मंदिर में भगवान आ गए, अब सबको खुशी हो रही कि कितने अच्छे से बड़े बाबा अच्छे से विराजमान हो गए, सब लोग आते हैं, वहां इतने नहीं बन सकते थे जितने यहाँ, तो अच्छी जगह पर पहुंचने पर सबको प्रसन्नता होती तो अपन को भी होना चाहिए। इस तरह से यदि अपने ज्ञायक स्वभाव में रहते हुए पर को अपना मानना छोड़कर परलोक जाओगे तो बहुत आदर से दिव्य धातु धातु रहित वैक्रियक देह में देव होकर अनेक महार्दिक देवों में पूज्यमान देव होगे, और यदि यहाँ भय करके अपने ज्ञायक स्वभाव को बिगाड़ कर पर में ममता धारण करते हुए मरोगे तो एक इंद्रियादि की देह में अपने ज्ञान का नाश करके जड़ जैसे हो जाओगे। इसलिए समाधि के लिए हमेशा हर व्यक्ति को तैयार रहना चाहिए। समाधि यानी समरसी भाव, देह की भिन्नता का निरंतर श्रद्धा ज्ञान और जीवन जीना। इसका अपन पाठ पढ़े लेते हुए और अब 21 नंबर का है। अब निज भेद यथारथ समझो मैं हूँ ज्योति स्वरूपी उपजे बिन से सोय है पुद्गल जानियो या को रूपी इष्ट अनिष्ट जीते सुख दुख है सो सब पुद्गल सागे मैं जब अपनो रूप विचारो तब भी सब दुख भागे विन समता तन नंत धरी में तिन में दुख पायो शस्त्र घातते नंत वार मर नाना योनि भ्रमायो बारे अनंत अग्नि माई जर मुओ सुमति न लायो सिंह व्याघ्र नंत बारे मुझ नाना दुख दिखायो मैं समाधि दुख लहे में अब और समता आई मृत्यु राज को भय नहीं मानो देवे तन सुखदाई याते जब लग मृत्यु न आवे तब लग जप तप कीजे जप तप बिन इस जग के माई कोई कभी ना सीजे स्वर्ग संपदा तप सो पावे तप सो कर में न सावे तप ईसो शिव काम निपति हुए या सो तप जित लावे अब मैं जानी समिता विन मुझ को नाई सहाई माते पिता सुत बांधव तिरिया ये सब है दुखदाई मृत्यु समय में मोह करे ये आरती हो है आरती ते गति नीची पावे यो लके मोहित जो है और परिग्रह जीते जग में तीन सो प्रीत न कीजे पर भव में ये संग न चाले नाहक आरत कीजे जी जी वस्तु तीन सो दे निवारो पर गति में ये साथ न चाले ये स्वभाव विचारो जो पर भव में संग चले ते तीन सो प्रीत सुखी जे समता धारो दान चार विद दीजे दस लक्षण में धर्म धरो अनुकंपा और लाओ सोलस का नित विचारो द्वादश भावन भावो चारों परवी रूसद कीजे समिता धर दुर्भाव निवारु संयम सोमनुरागो अंत समय में ये शुभ भावै होवे आने सहाय स्वर्ग मोक्ष फल तोई दिखावे रेधि देहि अधिकाई कोटि भाव उरे में समता लाके जासेति गति चारे दूर कर बसव मोक्ष पुर जाके मन तिरता करे राधन भाई ये तो को सुख की दाता और तुको नाही आगे बहु मुनिराज भई तिरता वारी बहु सहु शुभ भावन तीन में कछु एक नाम कहूं मैं सैते अनमोदे तासो दुर्गति होए न ताके हरु समतानि उर में आवे भाव अधीरज जावे योनि सिदिन जो उन मुनिवर को ज्ञान भी एक बैलगाड़ी चल रही थी और एक अंधी नागिन वहां पर थी। बड़े भाई ने कहा कि देख के चलाना बैलगाड़ी वो नागिन न मर जाए और उसने कहा कुछ नहीं होता और बैलगाड़ी चलाई और नागिन मर गई। अब वो नागिन मर के भाई माँ और ये लड़का जो गाड़ी चला रहा था ये बना उसका पुत्र और जैसे ये जन्मा त्योरी इसने माँ ने अपने बेटे को ऐसा फेंक ऐसा ऐसा कभी होता है कि माँ नौ नौ महीने गर्भ में रखे और तत्काल के जन्मे बच्चे को फेंक दे समझ में नहीं आया कुछ। पिताजी को बड़ा दुख हुआ कि इसको क्या हो गया तो उन्होंने उस बच्चे को दूसरी जगह पाला। वो 10-5 साल तक अपने खर्चे से उसको पालन पोषण करके एक बार उसे ऐसा लगा कि अब तो भूल गई होगी और दो चार लड़के थे उनके साथ उसे खेलने के लिए ले आए और जैसे ही वो बच्चा बैठा और उसे देख करके एक लात मारी उसे फिर भगा बाबू जी क्यों हो रहा कितना ईमानदारी से चलता है इस जगत का है? उसने मरण के में कारण बना तो अब उसको कैसे सहन करे वो जी और अपन को ये समझ में नहीं आता याद तो कुछ रहता नहीं वह पूरब में क्या हुआ था 500-500 मुनिराज अब कल से चालू होगी अपने मुनिराजों की कथा और अपन एक एक दो दो मुनिराजों की कथा पढ़ेंगे याद करेंगे कि सब विकट संसार हम आलू खाएंगे प्याज खाएंगे अदरक खाएंगे गाजर खाएंगे तो कैंसर बन के नहीं आएंगे तो कब आएंगे। हम यदि जीवन में करुणा नहीं रखेंगे संयम से नहीं रहेंगे तो यही पाप तो अपना उदय में आता और फिर वो निगत निकाचित रूप में चलता नहीं कैंसर की दवाई नहीं बना पाया कोई क्यों निगत है समझ लीजिए। तो अब अपने साथ अच्छा जीवन जिए बहुत मधुर जीवन जिए क्योंकि अपन गुरुदेव की संतान है जिसके चित्त में एक फूल के ऊपर पैर न पड़े बाबू। और एक व्यक्ति ने इतने कहा कि किसने देखे जी इतने में वो यात्रा पैर से चलते थे ना थोड़ी देर टहलते एकदम से ऐसे खड़े हो क्या बोला तूने सर्वज्ञ को जानता यानी सर्वज्ञ क्या कहलाती हैं, भगवान ने हमें क्या बताए। इतने फूल में वो बोलते थे कि तेरे असंख्यातों पूर्व जन्म के माँ बाप मामा नाना पिता है इसमें, और तुझे दया नहीं आती। ऐसे गुरु की अपन सब संतान है और अपन भी उन जैसा मधुर जीवन जी ऐसे।
स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप सहजानंदी, शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप सहजानंदी, शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप सहजानंदी, शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप।
बोलो ऋषभादि महावीर स्वामी पर्यंत चौबीस जिनेन्द्र भगवान नो जय हो। सीमंदर आदि अजित वीर्य पर्यंत बीस वीरमान जिनेन्द्र भगवान नो जय हो। अत्रे विराजमान श्री बाहुबली मुनिन्द्र भगवान नो जय हो। समय सार प्रवचन सार आदि समस्त जिनवाणी मात नो जय हो। घड़ीकार सर्वज्ञ एवं कुंकुंद आचार्य आदि अमृत चंद्राचार्य सर्व आचार्य उपाध्याय साधु गुरु भगवान नो
जय हो।
अपना अनंत 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 उपकारी श्री कहान गुरु देव नो जय हो। प्रशम मूर्ति भगवती मात नो जय हो। अपूर्व अवसर ने आत्मसिद्धि ना प्रदाता एवं कृपाणु देव नो जय हो। सत्य सनातन दिगंबर जैन धर्म नो जय हो।
निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार।